आज का प्रातः क्लास है बारह पांच तिरसठ रिकॉर्ड चला है। दुखियों पर कुछ रहम करो, क्लास में किसी ने अनाउंसमेंट किया? क्या आज बाबा के क्लास में नए विजिटर्स राजस्थान के वैद्यों का डिक्टेटर और उनका सेक्रेटरी आए हुए थे और सन्यासी तो रेगुलर आ ही रहे हैं? ओम शांति। ओम का अर्थ है बहुत सिंपल, कोई तो बड़ा लंबा चौड़ा सुनाते हैं, ओम को ईश्वर भी कह देते हैं। अब ओम तो अक्षर है, इनको कोई ईश्वर थोड़े ही कहा जाता है। हाँ, उनका कोई चित्र है तो इनको ईश्वर कह सकते हैं, बाकी लिखे हुए अक्षर को ईश्वर थोड़े कहा जा सकता है। ये ईश्वरीय कॉलेज है अथवा गार्डली यूनिवर्सिटी है, नाम भी लिखा हुआ है पाठशाला। किसकी पाठशाला? राजयोग की पाठशाला। राजाई के लिए पाठशाला है और राजाई के लिए ही राजयोग है। जैसे बैरिस्टरी योग कहा जाता है तो किसको याद करना पड़ेगा? जो बैरिस्टर पढ़ाते हैं उनको याद करना पड़े। तो बैरिस्टर और बैरिस्टरी को याद करना पड़े। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला आप समान बना देगा। पहले पहले तो कौन पढ़ाते हैं वो बात समझनी है। कई समझते हैं कि ओम भगवान है, लेकिन बाप समझाते हैं ओम तो अक्षर है। ये ओम का अर्थ समझना है। सारी सृष्टि का रचयिता बाप, जिसको मोस्ट बिलीवेड गॉड फादर कहा जाता है, वो एक है। उनका नाम है शिव। परंतु के आधार पर त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। उसको शार्ट करने के लिए ब्रह्मा से आ लिया, विष्णु से ऊ लिया और महेश का मां लिया, आ ओ मा। तीन अक्षरों को मिलाने से एक अक्षर बन गया ओम। ये हुआ त्रिमूर्ति शिव, है तो एक ही अक्षर। फिर भी कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर मोस्ट बिलेवड नहीं है। मोस्ट बिलेवड एक बाप को ही कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है। कहा भी जाता है ब्रदरहुड, तो जरूर सभी आत्माओं का बाप एक है और सभी ब्रदर्स को बाप से वर्षा चाहिए। ब्रह्म से ब्रह्म को वर्षा नहीं मिल सकता, इसी हालत में ब्रह्मा विष्णु शंकर जिन्हों का रचयिता बाप है वो भी ब्रदर्स हो गए। मनुष्यों की आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी आत्मा ही ठहरी। हाँ, वो सूक्ष्म वतनवासी और मनुष्य हैं स्थूल वतनवासी। है तो दोनों ही रचना, ब्रदर्स हो गए। अब ब्रदर्स को ब्रदर्स से वर्षा नहीं मिल सकता, तो हरेक बात समझनी है क्योंकि ये नई बात है। फिर से सो देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। इसको ईश्वरीय मशीनरी कहा जाता है, वो तो है क्रिश्चियन मशीनरी अथवा शंकराचार्य की मशीनरी, ये है ईश्वरीय मशीनरी। इनका डिक्टेटर खुद ईश्वर है। जिसको मोस्ट बिलेवड माँ गॉड फादर कहा जाता है और उनका नाम है शिव, उनकी बच्चों का नाम है शालिग्राम। बाप समझाते हैं ओम कोई गॉड नहीं है, ये तो एक अक्षर है। हाँ, उसका अर्थ है आई एम आत्मा। बाप कहते हैं मैं फिर कहूंगा हम परमात्मा। बच्चे हैं महात्मा कहेंगे, परमपिता परमात्मा व शिवो हम नहीं कहेंगे, बाबा कहेंगे आई एम साइलेंस, मैं परमपिता परमात्मा सभी शालिग्रामों का बाप हूं और मैं शांति का सागर हूं। तुम बच्चे भी कहेंगे ओम शांति, शांति के सागर बच्चे हैं। बाप कहते हैं तुम और हम जब निर्वाण धाम में रहते हैं तो हम भी शांत, तुम भी शांत रहते हो। वो है ही साइलेंस। तुम आत्माओं को फिर अशांति में आना पड़ता है, क्योंकि तुम ही पूज्य, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। और अभी तो बाप बच्चों से सन्मुख बात कर रहे हैं, मैं भी शरीर में आकर ओम शांति कह सकता हूं। आत्मा और परमपिता परमात्मा दोनों ही निर्वाण धाम शांति धाम के रहने वाले। अभी मैं बच्चों के सन्मुख हूं, जिन बच्चों ने मुझे अपना बनाया है वर्षा लेने के लिए, उन बच्चों की मैं सन्मुख हूं। तुम जानते हो बरोबर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश होना है, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद फिर नरक होना। तुम स्वर्गवासी बच्चों को नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं 5-4 वर्ष के पहले भी आया था, अभी हम तो मिले हैं, कल पहले भी मिले थे और कल्प कल्पांतर मिलते रहेंगे। मैं तुम बच्चों को वो ही प्राचीन सहज राजयोग जो 5000 वर्ष पहले सिखाया था और षष्ठी के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाया था, सो अभी भी सुना रहा। ये यूरोपवासी यादव थे और अनेक धर्म भी थे। देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आकर के फिर से स्थापना करता हूं। सतयुग से लेकर के कलयुग तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ कर तुम बच्चों को सुनाता हूं, समझाता हूं। तो मेरे को कहा जाता है त्रिकालदर्शी, क्योंकि तुम बच्चे तो जन्म मरण के चक्र में आते हो तो सृष्टि की हिस्ट्री को भूल जाते हो। तो तुमको तो त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मैं तो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं हूं तो मुझे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम बच्चों को भी आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूं, परंतु सदा काल के लिए नहीं, संगम युग में ही तुम भी त्रिकालदर्शी बनते हो। अभी बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, क्योंकि बाप फिर से आए हैं वही देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, जिसका ज्ञान भी प्राय लोप हो गया है। ऐसे नहीं है ये ज्ञान कोई परंपरा चलता चला आया है। बाकी हाँ कि शिव बाबा ने इस ज्ञान को इस समय दिया, इसने तुमको ज्ञान दिया, तुम फिर औरों को देते हो। उनमें भी जो राजा हैं, सन्यासी आदि सभी आ जाते हैं। बाकी सतयुग में परंपरा ये ज्ञान नहीं चलता है। अगर परंपरा चले तो फिर प्रायलोपनी कहा जा सकता है। बारह पांच तिरसठ की वाणी का दूसरा पेज। भारतवासी तो जानते ही नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। नहीं जानते हैं तो हिंदू कह देते हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल लिया तो सावरकर को कहा गया, अच्छा तुम हिंदू धर्म के हो तो अब फिर से आकर के देवी देवता धर्म के बनो। तुमको भी सहज राजयोग सिखलाया जाएगा। तो बोले हमको तो फुर्सत ही नहीं है। ऐसे बहुत आते हैं, कहते हैं ये नालिश तो बड़ी अच्छी है, हम जरूर फुर्सत लेकर के आवेंगे। फिर यहां से गए और खलास, यहां की बात यहां रह गई। जैसे बच्चा गर्भ के बाहर निकलता है तो गर्भ में जो त्राय त्राय करता है वो सब भूल गया, वहां की बात वहां रह गई। बाहर निकले और पाप कर्म करने लग पड़े। जैसे जेल बर्ड्स होती है ना, उन्हों को जेल ही अच्छी लगती है। भारतवासी जो देवी देवता धर्म के हैं वो भी आधा कल्प गर्भ जेल के बर्ड्स बन जाते हैं। बाकी सतयुग में गर्भ जेल नहीं कहा जाता है, वो तो गर्भ महल है। ये सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं, फिर वहां त्राहि त्राहि करते रहते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। बाबा ने समझाया है यहां है मदर फादर कंट्री, तुम्हारे माता पिता है ना, ये जगदम्बा भी है। जगत पिता भी है, गया भी हुआ है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये महिमा कोई लौकिक मां बाप की नहीं है। जब गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तो नजर ऊपर में चली जाती है। भारत में ही स्वर्ग के सुख घनेरे थे, अभी वो घनेरे सुख नहीं रहे। बाप कहते हैं मुझे वो घनेरे सुख देने के लिए परमधाम से नीचे आना पड़ता है। पुरानी दुनिया में आना पड़ता है, पतित दुनिया में आना पड़ता है और पतित शरीर में आना पड़ता है। उसे कहा जाता है ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा भी पतित हुआ ना, कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। अभी तुम बच्चे हो ब्रह्मा मुख वंशावली, और वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। किसकी कुख वंशावली है? तुम्हारा नाम है ब्रह्मा मुख वंशावली। किसकी मुख वंशावली? ब्रह्मा की मुख वंशावली। और वो है कुख वंशावली तो है, लेकिन किसकी कुख वंशावली है? वो ब्रह्मा की कुख वंशावली नहीं है, वो भी ब्रह्मा की वंशावली है, लेकिन कुख को याद करते हैं, गोद को याद करते हैं। मुख से निकले हुए भगवान के वर्षन सुन को याद नहीं आते, तुम वर्षंस को महत्व नहीं देते हैं। और तुम हो मुख वंशावली, मुख से निकले हुए वर्षंस को महत्व देते हो। अभी तुमसे पूछा जाए प्रजापिता ब्रह्मा को कितने बच्चे हैं, कृष्ण के लिए तो कह देते हैं 16,108 रानियां थी। अभी बाप कहते हैं ये भी भूल कर दी है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। फिर कहते हैं ब्रह्मा की 8-10 भुजाएं। तो ये सहयोगी मनुष्य हो गए, इस स्थूल भुजाओं की तो बात ही नहीं है। कृष्ण को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, बच्चे को बाप थोड़े कहा जाता है। ये तो संगम युग की बात है। हाँ, ब्रह्मा सो फिर श्री कृष्ण बनते हैं, तो ये संगम होने के कारण उन्होंने भारी भूल कर दी है। ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे और बहुत बच्चियां हैं, कृष्ण को बच्चे कैसे शोभेंगे? तो कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इनको तो बहुत बच्चे हैं। ये जगदम्बा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणी है। इनको देवी नहीं कहा जाता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बाद में देवी देवता बनते हैं। अभी तो ये ब्राह्मणी है, ज्ञान प्राप्त कर रही है, और ये प्रजापिता भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर के द्वारा ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा, अर्थात उनको ईश्वर के द्वारा ज्ञान मिल रहा है। ये कोई ईश्वर नहीं है। तो जगदम्बा का मतवा ईश्वर से भी बड़ा ठहरा। क्योंकि ईश्वर तो देने वाला है, तुम बच्चों को आके बड़े ते बड़ा मर्तबा देते हैं, लेते तो नहीं है। और मर्तबा तो इस दुनिया की बात है, तो बड़े ते बड़ा मर्तबा जगदम्बा का है। वो है राजमाता, और वो जो लक्ष्मी है वो है राजराजेश्वरी, राज लक्ष्मी कहा जाता है। और ये है ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती। इनको बाजा दिया हुआ है क्योंकि ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। बाप और बच्चे दोनों ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उन्हों को ज्ञान देने वाला है ज्ञान सागर शिव। तो ये बातें बहुत धारण करने की है, और इन बातों को धारण करने में बड़ी बुद्धि प्रफुल्लित चाहिए। अगर बुद्धि प्योर नहीं होगी और कोई अशुद्ध भोजन आदि आ गया तो ज्ञान सारा उड़ जाएगा, ठहरेगा नहीं। इसमें बड़ी परहेज है। माया ने गॉडरेज का ताला लगाए, पत्थर बुद्धि बनाई दिए है। सब पत्थर बुद्धि है। अभी मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान गए हो, शास्त्रों में तो कुछ भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल जैसे आटे में नमक मिसल है, और ये रामायण तो बिल्कुल झूठा है। फिर भी बंदर राम सीताएं आदि अक्षर तो हैं। इस समय सब बरोबर बंदर बुद्धि है। दस दस बारह बारह बच्चे पैदा करते रहते हैं तो कुत्ते हो गए। अभी गाड बाप आकर के भगवती भगवान बनाते हैं। भगवान के बगैर वाला कौन बनावेगा? भगवान के साथ योग लगाने से नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अब लक्ष्मी नारायण राजा रानी बनेंगे तो जरूर प्रजा भी बनेगी, और लक्ष्मी नारायण के बच्चे भी बनेंगे। गोया ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूरी राजधानी स्थापन होनी है। तो ये राजधानी स्थापन करने का काम क्या ये हठयोगी सन्यासी करेंगे? नहीं, वो तो है ही हठयोगी, और ये तो राजयोग है। तो अभी जिंदाबाद राजयोग होता है, ये हठयोग मुर्दाबाद हो जाएगा। स्वर्ग जिंदाबाद तो नर्क मुर्दाबाद, ये सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? बाप ही करेंगे। उनको ही क्रिएटर कहा जाता है। और श्री कृष्ण उनकी रचना है, रचना तो बाद में होती है, रचयिता या क्रिएटर तो पहले होता है। बच्चे बाप को ही पुकारते हैं, बच्चे पूछते हैं बाबा हम कब से दुखी होना शुरू हुए, तो बाप बैठ बतलाते हैं कि आख्यानी सारी भारत पर ही है। जब और धर्म वृद्धि को पाए लेते हैं तो इस देवता धर्म को जरूर प्राय लोप होना है। प्राय लोप होगा तब तो मैं आकर के स्वर्ग की स्थापना करूं। तो ये मेरा पार्ट है, मैं ब्रह्मा तन में आता हूं, परंतु ये तो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, 84 जन्मों को तो जानना चाहिए ना। अभी बाप बैठ बतलाते हैं कि 21 जन्म तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है और 63 जन्म रावण का वर्षा है, तो अभी तुम बच्चों को ये 84 जन्मों की कहानी सुनाई जाती है। मैंने तो तुमको सुख के संबंध में भेजा था, संबंध सुख के लिए होता है। अगर दुख हो जाए फिर तो बंधन हो गया। तुम सूर्यवंशी घराने में 8 जन्म रहे और चंद्रवंशी घराने में 12 जन्म, बाकी ये संगम का 1 जन्म तो सबसे ऊंचा है। इस संगम के जन्म को कहा जाता है ईश्वरीय जन्म। तो अभी तुम ईश्वर की संतान बने हो। 12/5/63 की वाणी का तीसरा पेड़, अभी ईश्वरीय संतान बने हो। इससे पहले तुम आसुरी संतान थे। 63 जन्म रावण की संतान थे ना, वहां तुमको आसुरी गोद मिलती है। अभी ये है तुम्हारी ईश्वरीय गोद, ईश्वरीय जन्म है, और ये जन्म सभी जन्मों से उत्तम जन्म है। इसके बाद फिर तुम 21 जन्म दैवी घराने में लेंगे, वो है डिटिज्म। तो ये आप पॉइंट्स अपने पास नोट करके रखनी है। जन्म जन्मांतर गीता तो बहुत पढ़ते आए और गीताएं भी अनेक प्रकार की हो गई, सभी ने अपनी अपनी मत चलाई दी। अब कहां ईश्वरीय मत और कहां मनुष्यों की मत। तो इस समय तुमने ईश्वरीय गोद ली है, परमपिता परमात्मा गॉड फादर मोस्ट बिलवड को तुमने अपना बनाया है। इसके बाद 8 जन्म सूर्यवंशी घराने में होंगे, फिर 12 जन्म चंद्रवंशी मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण की कोई भी बायोग्राफी व चरित्र नहीं है। कृष्ण को अगर द्वापर में ले जाते तो लक्ष्मी नारायण के छोटेपन की जीवन कहानी कहां गई। लोग तो कुछ भी समझते नहीं है। अभी बाप कहते हैं कि तुम बच्चे हमारे बने हो, तुम 21 जन्मों का सुख भोग फिर वाम मार्ग में गिरते हो, फिर मिलती है आसुरी 5 विकारों रूपी रावण की जो गोद, और रावण भी कोई को देखने में नहीं आया है। हाँ, कर्म से मालूम पड़ जाता है कि ये राम है ये रावण है। रावण का काम है रुलाना और राम का काम है रमण कराना, आनंदित कराना। अभी बाप ने 84 जन्मों का पूरा हिसाब बताई दिया। इस हिसाब को कोई भी निषेध नहीं कर सकता। और फिर लक्ष्मी नारायण के बच्चे भी तो होंगे ना, परंतु उन बच्चों का नाम नहीं दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे टाइटल चलता है। और भी प्रिंस प्रिंसेस बहुत रहते हैं। जैसे यहाँ भारत में भिखारी राजा रानी हैं, प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, सतयुग में महाराजा महारानी कहते हैं, त्रेता में राम सीता को राजा रानी कहा जाता। तो ये सभी राज बाप समझाते हैं। बल कहते हैं वेद पाठशाला, गीता पाठशाला, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो कोई भी नहीं जानते कि वेद पाठशाला में क्या बनते हैं, गीता पाठशाला में क्या बनते हैं। ये राजसी विद्या में तो एम ऑब्जेक्ट है। उन सत्संगों में तो कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं बतावेंगे कि तुम नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग बाप के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता। तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। पांडव श्रीमत पर चले ना, कौरवों ने मत नहीं ली तो उनों का विनाश हो गया। ये श्रीमत की बलिहारी है। बल कौरव गवर्नमेंट को कितना भी कहेंगे सीमत पर चलो, परंतु वो फिर भी चलेंगी नहीं। जो कल्प पहले आए थे वो ही आकर के सीमत लेंगे। श्रीमत पर चलना, बलि चढ़ना बड़ा मुश्किल है। बाप को ट्रस्टी बनाना पड़े। राजा जनक ने भी ट्रस्टी बनाया तो जीवन मुक्ति पाई। बाप तो किसी की राजाई को लेंगे नहीं, ये तो ममत्व मिटाने के लिए कहते हैं कि सब कुछ मुझे दे दो, ट्रस्टी बन जाओ और जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो। जनक को चंद्रवंशी में मिला, सूर्यवंशी में नहीं मिला। उनकी मिलकियत कोई काम में थोड़ी ही आई जो बाबा भर करके देवे। तो बाबा बड़ा सौदागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापारी है। बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे लाड़ले सिकिंदे बच्चे, क्योंकि बच्चे पूछते हैं ना, बाबा हम सभी आपके सिकिंदे नहीं है क्या? बाप कहते हैं नहीं बच्चे, तुम बच्चे ही 5-4 वर्ष बाद आकर के मिले हो, भला आगे पीछे मिलती तो सारी सृष्टि है। परंतु वो मिलते हुए भी मेरे को नहीं जानते हैं। जानेंगे वो जो देवी देवता धर्म वाले होंगे, उनको ही आकर के फिर वर्षा लेना है। देखते हैं कहां कहां तक ज्ञान की टेस्ट बैठती है। उनको टेस्ट बैठती है तो कहेंगे ये हमारे सिकिल्ले कुल के हैं, तुम हो रूहानी पंडे, तुम ले जाते हो शांति धाम सुख धाम, अभी तुम्हारी यात्रा चालू है, तुम शिव बाबा के नजदीक मुक्ति धाम के नजदीक जा रहे हो, वहां पहुंच करके फिर तुम जीवन मुक्ति में आवेंगे। परंतु ये बातें और कोई तो समझा ही नहीं सकता, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने, ये पूज्य से पुजारी बनने में तुमको कितना समय लगा? कहते हैं पूरा पूज्य से पूरा पुजारी बनने में पूरा 84 जन्म लगा, वो तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। गरुड़ पुराण में कितनी रोचक बातें बताई दी हैं। समझते हैं मनुष्य जास्ती पाप नहीं करेंगे। बाप कहते हैं यहां तो बहुत परहेज है, देवताओं को हमेशा शुद्ध भोग लगाया जाता है, वो शुद्ध भोग ही तुमको खाना है। वो तो होते हैं 8 योग ऋषि और तुम हो राजयोग ऋषि। तुम राजयोग ऋषि फिर बादशाह बनेंगे। ये जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी का मर्तबा भी बड़ा है। अभी माने कब? संगम युग में जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। लक्ष्मी की पूजा तो बरस बरस में एक बार करते हैं। व्यापारी लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको 4 भुजाएं दी जाती है, वो है चतुर्भुज, क्योंकि विष्णु भी चाहिए ना। तो जगदम्बा 21 जन्मों का वर्षा देती है, 12/5/63 की वाणी का चौथा पेज। लक्ष्मी देती है वर्ष वर्ष में अल्पकाल का सुख, थोड़े पैसे देती है, तो जगदम्बा बड़ी हो गई ना। इस समय जगदम्बा बड़ी है और लक्ष्मी छोटी। इस समय जगदम्बा 21 जन्म का राज भाग दिलाती है और वो ही लक्ष्मी फिर अल्पकाल के लिए इस समय पैसे देती है। लेकिन है कौन से पैसों की बात है? लक्ष्मी कौन से पैसे देती है? और जगदम्बा कौन सा मर्तबा देती है? संगम युग में मर्तबा लेना अच्छी बात है या घाटे का सौदा है? है संगम युग में मान मर्तबा लेना ये अच्छी बात है या घाटे का सौदा है? ये तो घाटे का सौदा हो गया। ईश्वरीय मान मर्तबा लेना है और लक्ष्मी जो धन देती है वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन देती है, वो ईश्वरीय धन भले इसे एक जन्म में मिलता है परंतु जन्म जन्मांतर की कमाई का कारण बन जाता है। तो देखो लक्ष्मी से बरस बरस में भीख मांगते हैं, अच्छा फिर भी बाबा कहते हैं श्वासोश्वास शिव बाबा को याद करो, न लक्ष्मी को याद करो न जगदम्बा को याद करो, क्योंकि वो शिव बाबा ही मोस्ट बिलेवर्ड है। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरी याद में रहकर पवित्र बनेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे और फिर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, अगर विकार में गए तो फिर बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी, कुल कलंकित बन पड़ेंगे, फिर चांडाल का जन्म मिलेगा, 5 विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो हरिश्चंद्र चांडाल की कथा है ना, और चांडाल उनको कहा जाता है जो शमशान में मुर्दे को जलाते हैं। रायल घराने के चांडाल अलग होते हैं और प्रजा के चांडाल अलग होंगे, उनकी शमशान घाट भी अलग अलग होगी। तो बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, मैं धर्मराज कालों का काल हूं, सभी आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आया हूं, शांति धाम जाऊंगा फिर सुख धाम भेज दूंगा। तो बाबा कहते हैं फिर बेकार में नहीं जाना, पहले पहले आता है शुद्ध अहंकार, बाद में और विकार आते हैं। देह अभिमान के आने से ही गिरते हैं। देही अभिमानी तो नहीं गिरेंगे। तो पहले पहले देही अभिमानी भव, मेरे साथ योग लगाने से फिर माया का वार भी नहीं होगा, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। कोई अपवित्र के हाथ का खाया तो बुद्धि में रोला पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने हाथ का बनाया हुआ खाओ, बहुत नशा चढ़ जाएगा। ये कलयुगी दुनिया वैश्यालय है, सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव ने आकर की स्थापना की है, भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय। समझते हैं साधु लोग शिवालय बनावेंगे, परंतु शिवालय तो शिव बाबा के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। कहते हैं कि मैं आकर के इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं, और करता भी हूं इन माताओं के द्वारा, जिन माताओं का ये साधु लोग तिरस्कार करते रहे हैं। इन साधुओं को कुमारियों के द्वारा बाण मरवाए हैं। तो यहां सन्यासी भी बहुत आते हैं, जो आते हैं वो हैं असुल देवता धर्म के। कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर जरूर यहां आ जाएंगे, जावेंगे कहां। तो बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे सन्यासी क्रिश्चियन आदि सब धर्मों को छोड़ दो, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये छोड़ दो, अपन को देही आत्मा समझो, मेरे साथ योग लगाओ। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं गाइड बनकर के आया हूं, फिर तुम्हारी अंत मते सुगति हो जाएगी। एक दो को सावधान करते रहना है, पापों का बोझा बहुत सिर पर है। जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई है, विनाश का समय नहीं आया है, तब तक विकर्मों का हिस्सा रह जाता है। जब कर्मातीत बन जावेंगे फिर शरीर छूट जाएगा। फिर ये क्लास भी पूरा हो जाएगा। तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ये ब्रह्मा भी 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ देंगे। तब तक पढ़ते ही रहना है। बाकी लड़ाई आदि की रिहर्सल तो होती रहेगी, और तुम ज्ञान में रिफाइन भी होते रहेंगे। वहां बॉम्ब्स रिफाइन होते रहेंगे, क्योंकि फिर कोई अस्पताल आदि तो रहेंगी नहीं, कौन संभाल करेगा। इसलिए रिफाइन बनाते हैं कि पूरे खलास हो जाए। आत्मा कोई दुख होता है तरस भी उन पर पड़ता है, धर्मराज भी सजा देते हैं तो भी शरीर धारण कराते हैं। ऐसे नहीं कि सूक्ष्म में शरीर से सूक्ष्म में सजाएं भोग करके खत्म कर देंगे। बाप कहते हैं आत्मा दुखी न हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज आज से जल्दी जल्दी खलासी होगी। बाबा ने समझाया है ये रुद्रमाला है फाइनल, अभी तो अजन ये पुरुषार्थ चल रहा है, अभी तो रेस है, अभी कंप्लीट माला नहीं बन सकती, ये अदली बदली होती रहेगी। फिर दाना निकालना ऐड करना पड़े तो अंत में कंप्लीट रुद्रमाला बनेगी, फिर वह विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। विजय प्राप्त करके विष्णु की माला बनेगी। तुम सभी के साजन भी हो, साजन सज्जन को कहा जाता है, सज्जन अर्थात सत्तजन, तो तुम सज्जन भी हो और दुश्मन भी हो। तुम कहते हो ये अनेक धर्म सभी खलास हो जाए फिर हम राजी करेंगे, तो दुश्मन ठहरे ना, ये बहुत वंडरफुल नॉलेज है। अभी देखो ये वैद्यों का डिक्टेटर आया हुआ है, ये बाबा भी है अविनाशी वैद्य, योग से हम 21 जन्म एवर हेल्दी बन जाते हैं। जो भी पूरा योग रखेगा तो एवर हेल्दी बनेगा। तो कितनी सिंपल नॉलेज है जो बच्चों को धारण करनी है। अच्छा, बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।